नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूर्य सब माया है अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार कृष्ण भक्ति हर अभिधेय प्रधान भक्तिमुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विभिन्न साधन हैं, जथा कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। यही सब साधन रहते तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिनतः देते नारे फल। किंतु भक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्बल तथा तुच्छ है। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता है। निष्कर्म्यच्युत भाव वर्जित न शोभते ज्ञानमलं निरंजनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म जदप्यकारणं तपस्विनो दान पराजसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री वैष्णवतन गोस्वामी को शिक्षा देते समय अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में, और 23वें अध्याय में प्रयोजन का वर्णन किया, 24वें अध्याय में आत्मराम श्लोक की 61 व्याख्या किए है, और 25वें में सन्यासियों का उद्धार किए हैं वाराणसी में। यहाँ भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, और कर्म योग और ज्ञान ये तब फल देते हैं जब इनमें भक्ति होती है। भक्ति के बिना ये फल नहीं दे पाते। यही सब साधन और अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्त बिना तहत देते न रखना। ये जो साधन है शास्त्रों में कहे गए हैं, भगवान ने गीता में भी बड़े ही विस्तार से इन सबका वर्णन किया है। कर्म योग ज्ञान योग और अष्टांग योग, अष्टांग युग को ही प्राय योग शब्द से कहा जाता है। आज के युग में तो केवल शारीरिक व्यायाम को ही लोगों ने योग कहना चालू कर दिया। योगा योगा फालतू प्रयोग, कुछ भी मालूम नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति, तस्मात योगी भवार्जुन। भगवान गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन सबसे बढ़कर के योगी है, तो तुम योगी बनो। और उसी को स्पष्ट और करते हैं, रिफाइन करते हैं, मत भक्तो भव। कोई ये सोचे कि योगी बनने के लिए कभी कभी कृष्ण कह रहे हैं और कभी भक्त बनने के लिए, दो बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। योगी का अर्थ है भक्त। तो भक्ति योग के बिना कर्म योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग ये फल नहीं दे पाते। कृष्ण भक्ति बिना तहत दीते नारे फल, क्योंकि इन सब साधनों में स्वतंत्र रूप से कोई बल नहीं है, अति तुच्छ बल। थोड़ी सी मदद करते हैं ये योग, तीनों योग है कर्म योग ज्ञान योग और अष्टांग योग, ये जीव के संसार बंधन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अति तुच्छ बल है, तुच्छ मतलब थोड़ी सी संसारिक सिद्धि आदि प्राप्त कर लेना, जस प्राप्त कर लेना, यही सब, बाकी कर्मबंधन नष्ट नहीं कर सकते हैं, जीव को मुक्त नहीं कर सकते। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ दो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवत के। पहला है श्री नारद जी भगवान के व्यास देव को भागवत रचने की शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय कहते हैं नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्धितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः स सर्वभद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म जदप्यकारणम्। कैमूर्ति न्याय से कह रहे हैं जो निष्कर्म ज्ञान है, ज्ञानम कैसा ज्ञान, निष्कर्म है। निष्कर्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म है, प्रकृति से पार तत्व को ब्रह्म कहते हैं और उसका ज्ञान निष्कर्म ज्ञान कहा जाता है। वह भगवान का भी ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म माने भगवान ही होता है, भगवान प्रकृति से परे हैं, ये हैं वो हैं ऐसे। यह ज्ञान भी केवल प्राकृत धारणा से उन्मुक्त करके अप्राकृत रूप में जानना केवल, इसको निष्कर्म ज्ञान कहा गया है। तो यह ज्ञान भी अच्युत भाव वर्जितम, यदि श्री कृष्ण के भक्ति से शून्य है तो न अलम शोभते, यह शोभित नहीं होता है। फिर कर्म के विषय में क्या कहना, जो सात साधन काल और साध्य काल में दोनों तरफ से वो दुख रूप है। कर्म करते समय भी सुख नहीं मिलता है और कोई उससे आत्मा को वास्तविक सुख भी नहीं मिल पाता है साध्य रूप में, इसलिए शश्वत अभद्र कहा गया। शश्वत सदा साधन काल और सिद्धि काल दोनों में जो दुखप्रद है, दुखदायक है, ऐसा कर्म कैसे जीव को श्रेय दे सकता है। जब निष्काम कर्म योग भी ब्रह्म संबंधित ज्ञान भी सुख नहीं दे पाता है तो फिर कर्म कैसे सुख दे सकता है, जीव कैसे मुक्त कर सकता है और भगवान से प्रेम दे सकता है, भगवान के चरणारविंद में प्रेम दे सकता है, कभी संभव नहीं है। यद्यपि अकारण हो, यहां तक कि निष्काम कर्म भी किया जाए, कोई फल की कामना न रख करके अपना कर्तव्य मान करके किया जाए संसार में, परंतु यदि अच्युत भाव वर्जितम, ये ज्ञान और कर्म दोनों यदि अच्युत भाव से वर्जित है, भाव का अर्थ है भक्ति, अच्युत का अर्थ है जो अपने स्वभाव से कृपा आदि गुणों से अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं उनको अच्युत कहते हैं, अथवा प्रलय काल में भी जिनके भक्त च्युत नहीं होते हैं, स्वरूप से वंचित नहीं होते हैं, तो उनको अच्युत कहते हैं श्री कृष्ण। अच्युत भाव वर्जितम, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से शून्य है यदि ज्ञान जो ज्ञान और कर्म भी, तो ये दोनों किसी काम के नहीं है। जब ज्ञान ही सुशोभित नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान वह भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर कर्म के विषय में क्या काम। तो संसार में लोग अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, भले वे वैदिक अनुशासन के अनुसार भी करें फिर भी वह व्यर्थ है। एक और उदाहरण देते हैं, तपस्विनो दान पराजस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं विन्दन्ति विना दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। भक्ति के बिना सारे साधन विफल हैं, ऐसा कहते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। द्वितीय स्कंध के चौथे अध्याय में श्लोक 16वां श्लोक, तपस्विनो दानपरा जसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला डिपार्ट है इस संसार में इनकी बड़ी बड़ी महिमा कही जाती है और शास्त्रों में भी प्रशंसा है, परंतु भक्ति के बिना यदि ये सब किए जाते हैं तो इन सब साधनों को करने के कारण साधक को परम सुख है, परम श्रेय नहीं मिल पाता है, उसका संसार बंधन नष्ट नहीं हो पाता है। तपस्वी न तपस्वी पहला जो तप करते हैं, भक्ति नहीं करते केवल तप करते हैं। कौन कौन तप है? तप है ज्ञान अभ्यास में परिश्रम भी एक भारी तप है। इसीलिए तपस्विन का अर्थ योगी भी किया गया है, योगी ना तप करते हैं। और कुछ है कर्मी लोग तप करते हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत करना है, कोई भी कष्ट सहना है स्वधर्म पालन में, इसको तप कहा गया। ऐसे तपस्वी जन और दान परा, और कुछ लोग बहुत दान देते रहते हैं, दानशील होते हैं, उनके पास धन होता है तो कई प्रकार से वे जनता का कल्याण करते रहते हैं, दान देते हैं, दान परा दान परायण बहुत दान देते हैं। और यशस्वी न ये भी कर्मी विशेष ही हैं जो बहुत यशस्वी होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि करना या कुआं बावली आदि खुदवाना या फूड फॉर लाइफ चलाना, ये सब दान यशस्वी न जस लेते, जस मिलता है ना इन सब कार्यों से, व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छा यशस्वी न। और मनस्वी न, मनस्वी का अर्थ होता है जो मन वाला, जो मन पर नियंत्रण किया है, अपने मन पर और अपने इंद्रियों पर, बाह्य इंद्रियों पर और अंत इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है उसको मनस्वी कहते हैं, नियंत्रण कर चुका है, इसका अर्थ है यहाँ योगी। आज के अर्थ में शास्त्रों में जो भक्ति के अलावा, भक्ति योगी के अलावा जो योगी शब्द है वो इसका वाचन योगी है। मन पर भी नियंत्रण रखा है, केवल इंद्रियों पर भी नहीं, इसको मनस्वी कहते हैं। और मंत्र विदा कुछ लोग आगम शास्त्र के ज्ञाता है, वेदों के जो मंत्रों को बहुत जानते हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं, मंत्र में ही वेद है, तो मंत्र जानने वाले सुमंगला और सदाचार का पालन करने वाले इतने महान लोग हैं और अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी साधना को, तपस्या को, दान को, जस को, इंद्रिय और मन को और मंत्र को तथा सदाचार को बिना जगर्पण यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं तो क्षेम न बिंदंती, कल्याण नहीं होता। क्षेम जीव का क्या है? संसार बंधन से मुक्त हो जाना और भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करना, यही सर्वोपरि क्षेम है जीव का। जन्म मृत्यु से पार हो जाए और भगवान के धाम में चला जाए, भगवान की सेवा करे, यही है जीव का परम श्रेय या क्षेम। लेकिन इतने बड़े बड़े साधन करने वाले लोग भी यदि अपनी साधना को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं, दास से भाव स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्षेम न बिंदंति। यह वाक्य श्री वसुदेव गोस्वामी का है, वे मंगलाचरण करते समय यह श्लोक बोले हैं, क्षेम न बिंदंति बिना जदर्पण तस्मय सुभद्र सरसे नमन। ऐसे सुंदर कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, नमः नमः दो बार भिक्षा कर रहे हैं, अनेकों बार मैं भगवान को प्रणाम करता हूं। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्षेम प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है, भक्ति ही एकमात्र विकसित चीज है, और भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है भगवान को बारंबार प्रणाम करना। नमो नमः इस वाक्य से सिद्ध हो रहा है, नमो नमः। इतनी भारी भारी तपस्या करना, इंद्रिय संयम करना, वेदों का ज्ञान हो, सदाचार का पालन हो, सब हो, इन सबसे बढ़ करके है किसी भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करना, ये सिद्ध हुआ। इस श्लोक के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ये सब सिद्ध कर रहे हैं वाक्यों से। और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो कैसे भगवान को, उनके गुण बताते हुए कहते हैं, सुभद्र श्रवसे, सुभद्रम मंगलमयम, श्रवा जसो जस्य तस्मय, जिनका जस अत्यंत मंगल देने वाला है, परम सिद्धि देने वाला है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो कृष्ण को नमस्कार करना और कृष्ण की कथा सुनना और बोलना, गान करना, यही है मंगल प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय। सुभद्र श्रवसे, ये सत्कार जिनका जस है अत्यंत सुभद्र है, मंगलमय है, कैसे मंगल करता है, श्रवण और कीर्तन से, भगवान की बात सुनने से और गाने से बोलने से जीव का परम मंगल होता है। भगवान का नाम उच्चारण करने से संसार बंधन कट जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, यही है भक्ति। वास्तव में भगवान की कथा सुनना, गान करना और प्रणाम करना, यही भक्ति। तो नाम जपामि नमामि हरि, भगवान शिव कहे हैं रामचरितमानस में भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, मैं तो बस इतना ही साधन कर पाता हूं, तो नाम जपामि नमामि हरि, मैं आपका नाम जप करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं, और तो हमको कुछ आता नहीं है, भगवान शिव कहते हैं। तो नाम जपा में नमामि हरि, भगवान की कथा सुनना और कीर्तन करना तथा प्रणाम करना, यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भक्ति। तो अनेक प्रकार की तपस्या, दानशीलता और मन आदि पर विजय, और अनेक यज्ञ आदि करके जस प्राप्त करना, मंत्रों का ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान और सदाचार आदि का पालन, पर यदि कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है तो मंगल नहीं होता है, क्षेम नहीं होता है। क्षेम कैसे होता है, श्री कृष्ण की कीर्ति के श्रवण और गान से और प्रणाम से, ये सिद्ध हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान कर्म और योग सफलता नहीं दे पाते, कोई सुख नहीं दे पाते। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, कृष्ण मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञान। भक्ति के बिना केवल ज्ञान, भक्ति से शून्य केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे पाता, परंतु कृष्णोन्मुख जीव को ज्ञान के बिना ही भक्ति मुक्ति मिल जाती है। कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान, वही मुक्ति जो ज्ञान से नहीं मिलती है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन उस ज्ञान का मतलब है भगवत भक्ति से युक्त ज्ञान, अन्यथा भक्ति नहीं है तो ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। और भक्ति है केवल और कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उस साधक, उस भक्त की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति का मतलब भगवान के धाम में चला जाता है, यही है मुक्ति। मुक्ति का यही अर्थ है। प्राय लोग समझते हैं मुक्त हो जाना, भगवान में मिल जाना, ब्रह्म में मिल जाना, इसको मुक्ति नहीं। पर ये मुक्ति थोड़े है, तो मरण है कि नहीं। मान लीजिए कोई जेल में बंद है तो जेल से छूट गया तो कहा जाएगा मुक्त हो गया। जेलर में ही समा जाए तो उसका आत्मनाश है ना, वो तो मुक्ति हुई नहीं, मृत्यु हुई, मरण हो गया, समाप्त हो गई सत्ता। ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ममई मांसो जीव लोग के जीव भूत सनातन, ये सनातन है मेरा अंश, हमसे हमेशा पृथक ही रहता है, कभी मिलकर एक हो ही नहीं सकता। उदाहरण देते हैं कभी कभी लोग की, जैसे समुद्र में बूंद जाकर के समा जाती है, वैसे एक दिन जीव जाकर भगवान में समा जाए। जीव बूंद नहीं है, वो समा जाएगा। न जाने कितने जीव समाये हुए, अब सारे जीव तो भगवान में है ही, वास्तव में सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर है और नहीं भी है, दोनों बात सत्य है। जैसे हम लोग इसमें मान लीजिए इस घर में बैठे हैं, तो हम ध्यान कर सकते हैं कि पूरा भारत में देख रहा हूं। इसका मतलब कि भारत या पूरा विश्व जिसको आदमी देखा है सुना है, एक प्रकार से उसके मन के भीतर आ गया, हट गया है ना। ये घर ही नहीं, पूरा विश्व मन में अट जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी भीतर नहीं है। और हम देखें तो इस घर के हम अंदर हैं, फिर भी हमारे अंदर सारा विश्व दिखाई देता है, पूरा बड़ा बड़ा पहाड़, हिमालय या समुद्र आदि सब देखे जा सकते हैं। तो जब मन के भीतर ये सब अट सकते हैं और नहीं भी रहेंगे, तो फिर पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान में सारा विश्व है और नहीं भी है, ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है। प्राकृत वस्तु में सारी वस्तुएं मिल सकती है, मन प्राकृत है, चिंतन करता है। मान लीजिए हम ध्यान कर रहे हिमालय, पूरा हिमालय इतना भारी जहां तक देखा गया है और आ जाता है मन, लेकिन तत्वतः कुछ नहीं है। हम एक छोटे से कमरे में हैं। तो इस प्रकार भगवान में सारा विश्व है और नहीं भी है। मैं किस बात पर कहा मैं भूल गया। हाँ, मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाना नहीं है, भगवान के पास होना, उनकी सेवा करना, उनको देखना, उनको झूला झुलाना, उनको बांसुरी धारण कराना, मोर पंख पहनाना, वो खिलाना पिलाना, उनका गुण गाना, उनका जस गाना, इसको कहते हैं मुक्ति। इसीलिए चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो मुक्त है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ जीवित है इस शरीर में, ये शरीर अभी जीवित है, इसमें है आत्मा लेकिन मुक्त है। इसका मतलब उस पर कोई केस मुकदमा नहीं है प्रकृति का, जब चाहे शरीर छोड़ करके जाएगा भगवान के धाम में रह रहा है। जो कोई जेल में रह रहा हो लेकिन अब उसका केस खत्म हो गया हो, जाने वाला, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त को जेल मुक्त कह सकते, जेल में है लेकिन मुक्त है, तो कोई जेल के नियम लागू नहीं हो रहे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, प्रणाम करता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, नाम का उच्चारण खास करके कर रहा है, तो वह बंधन में नहीं है, मुक्त हो चुका है। मुक्त होने के बाद तब नाम का उच्चारण होता है, बद्ध दशा में उच्चारण होना ही कठिन है। इसमें भी सत्य है, कोई भावुकता नहीं है। असल में जो भक्त है वही मुक्त है, बाकी दूसरे लोग है जो मानते हैं कि हम मुक्त हैं तो विमुक्त मान ही ना, केवल मानना है उनका, मुक्त नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं ज्ञानी लोग कि हम जीवन मुक्त हैं, इसको भी यहाँ पर बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान है। जिसको भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, न उसको उपनिषद आता है, न भगवद गीता का ज्ञान है, जो भी है नहीं ज्ञान है, परंतु यदि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो वो बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाता है, भक्ति उसको मुक्त कर देती है। जैसे किसी व्यक्ति को ये पता न हो कि भगवान का वास्तविक क्या स्वरूप है, वो सच्चिदानंद घन है, ये है, लेकिन केवल प्रणाम भी करे तो मुक्त हो जाएगा। भगवान के नाम का उच्चारण करे बस मुक्त हो जाएगा। ये भगवान को कुछ अर्पित कर रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, भक्ति भाव से माने कि भगवत गीता दे रहा है, कि भगवान की वाणी है, किसी को दे रहा है, यह सोच करके कि भगवान का ये वचन है, इसको व्यक्ति पढ़ेगा तो इसका हित होगा, तो केवल इससे भी मुक्त हो जाएगा। कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान, केवल कृष्णोन्मुख होना चाहिए, कृष्ण के तरफ मुख होना चाहिए, चाहे कृष्ण का ज्ञान हो चाहे न हो। जैसे पुतला, पुतला को ज्ञान नहीं था कृष्ण का, वो जानती थी कि यही खतरनाक लड़का है, इसको मारना है, बस इतनी ही, कितना ही ज्ञान था, पर गई कृष्ण के तरफ। भगवान ने उसके दोषों को नहीं देखा, केवल इतना ही देखा कि यह गोपी वेश बनाई है और हमारे तरफ आई है, वृंदावन में आई, ब्रज में आई, गोकुल में, केवल इतना ही देखा। तो भगवान अपने स्वभाव से बाध्य है ना, बाध्य का मतलब वो कृपा में है, उन्होंने कृपा किया, उसको सचमुच के अपनी माँ बना लिया, अपनी नित्य लीला में। दूध पिलाने नहीं आई थी, विष पिलाने आई थी, लेकिन आई थी ना। तो जब भक्ति के बिना केवल कृष्ण के अभिमुख होने से ही सब कुछ मिल जाता है, भगवान का पार्षदत्व तो मिल जाता है, गोलोक वृंदावन मिल जाता है, तो फिर कोई भक्त यदि सुचारू ढंग से भक्ति कर रहा है तो उसमें क्या संदेह है। उतना मारने गई थी भगवान को, इतना क्रूर हृदय, वह भी बच्चा समझ करके मारने गई थी, कि बच्चे को दूध पिला करके, दूध पिलाने का बहाना करके विष पिला करके मार दो, भगवान ने उसको प्रतीक किया। इसको कहते हैं कृष्णोन्मुख। यद्यपि पुतना कृष्णोन्मुख भी नहीं हुई थी, कृष्णाभिमुख हुई थी, अभिमुख मतलब जा रही थी कृष्ण के तरफ मारने के लिए, तो जो मारने के लिए राक्षसी आ रही थी उसको भगवान ने मातृ गति दिया, अपनी मां बना लिया, धाय बना लिया नित्य लीला में, तो फिर इन भक्तों का क्यों नहीं ऐसा उद्धार होगा। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान को कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उनका कैसे नहीं उद्धार हो सकता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे कृष्ण मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान, बिना ज्ञान के ही सब कुछ हो जाता है। श्रेया श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यक यथा स्थूल तुषावघातिनः। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है, बल्कि ये जो साधन है कर्म योग और ज्ञान, ये केवल कष्ट ही देते हैं। मुक्ति क्या देंगे, और केवल परिश्रम देते हैं, दुख देते हैं। इसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, हे विभो, ये श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य क्लिश्यन्ति केवल बोध लब्धे, जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भारी परिश्रम करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं जिसे मन एकाग्र हो, तब ज्ञान होता है वास्तव में। नहीं तो बिखरे हुए मन से ज्ञान नहीं होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए फिर इंद्रियों पर निग्रह करना होता है, इस तरह से करके तब शास्त्र अभ्यास, चिंतन, ध्यान आदि करना होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से कि हे विभो, हे प्रभो, ये ते श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य, जो आपकी भक्ति का त्याग करते हैं, भक्ति कैसी है, श्रेय श्रुति, सब प्रकार के श्रेय का झरना जहां से झरता रहता है, जैसे बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर ऊंचे स्थान पर पहाड़ पर, उससे बहुत से झरने निकलते रहते हैं, पानी झरता रहता है चारों तरफ, इसको श्रुति कहते हैं। महासरोवर से जैसे अनेक झरने निकलते रहते हैं, वैसे ही जितने भी कल्याण हैं, श्रेय हैं, सबसे श्रेय क्या है, अपवर्ग मुक्त हो जाना, भगवान के धाम में चले जाना, ये सबसे बड़ा श्रेय है। परंतु और भी श्रेय हैं, छोटे छोटे श्रेय, जैसे स्वर्ग प्राप्त करना या योग की सिद्धियां प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब भी श्रेय है। तो भक्ति भगवान के चरणों में ऐसी है जो सब श्रेय देती है। अकामा सर्व कामों व मोक्ष काम उदार धी, सर्व काम, सारे कामनाओं को पूरा करती है भक्ति। भगवान का धाम तो देगी ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इसके साथ ही संसार की संपत्ति, स्वर्ग, पाताल की संपत्ति और योग सिद्धि आदि सब कुछ मिलता है भक्ति से केवल। लेकिन ऐसी भक्ति को उदस्य, उत अस्य, अस्य का अर्थ है छोड़ करते, भक्ति नहीं करते जो लोग, नाम जप आदि नहीं करते और भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, इसको छोड़ चुके। उत अस्य, उत का अर्थ है दूरे, अस्य त्यक्त, भगवान की भक्ति को पूरा दूर से छोड़ चुके। क्योंकि भक्ति के प्रति किसी किसी का अनादर भाव होता है, आदर नहीं होता है। देखा गया है चारों तरफ संसार में भक्ति की किस तरह अवज्ञा लोग करते हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन नाम उच्चारण नहीं करना है, कीर्तन नहीं करना है, और प्रकार के साधन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में भी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होती, उनकी माइक बुद्धि होती है। और भगवान के प्राप्ति में जो साधन है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, इसके प्रति भी आदर बुद्धि नहीं होती। इसको कहते उदस्य, दूर से ही त्याग देते हैं। और त्याग करके करते क्या है, बोध लब्धे केवल क्लिश्यन्ते, बोध लब्धे क्लिश्यन्ते, ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट सहते हैं। जैसे मैं कहा, इंद्रिय निग्रह आदि और रात्रि जागरण, उपवास, नाना प्रकार के तप करके ज्ञान बोध लब्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्लेशांत, क्लेश सहते हैं, आराम से खाते भी नहीं है। भक्त लोग तो बल्कि अच्छा से भगवान का प्रसाद खाते हैं, लेकिन बोध लब्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ लोग कई दिन उपवास करते हैं, सुख जाते हैं कांटा की तरह, और ज्ञान भी नहीं होता है। ज्ञान तो होता ही नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम भर करते हैं। तो ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है और वो चावल प्राप्त करना चाहता है, राइस चाहता है भात बनाने के लिए, और वो देखे कि चावल का भूसा तू से पहाड़ जैसा कहीं गांजा हुआ है, पहाड़ से देखे और खुश हो जाओ, हो इतना चावल मिल गया, हम इसको कूटेंगे तो कितना दिन आनंद से खाएंगे। लेकिन उसको कूटने के बाद वो एक टाइम का भी भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि तू से है केवल, उसमें चावल नहीं है। तेसा में सब क्लेशल वशिष्य नान्य जथास्थूल तुषावघाति नाम, स्थूल तुष, स्थूल तुष का, स्थूल का अर्थ बहुत मात्रा में, बहुत अमाउंट में, कहीं राइस मिल के बाहर मान लीजिए ऐसा रखा गया है, केवल तुष है, केवल भूसा है, और उसको ले करके वो कूटना चालू करे, वो भी मशीन में नहीं, ढेकी में। ढेकी समझते हैं आजकल के लोग? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहावत कहते हैं कि ढेकी स्वर्ग जाइए तो कुटही के पर। ढेकी अगर स्वर्ग में भी जाएगी तो उसको कूटना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ढेकी का क्या मतलब हुआ। जो लोग देखे हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग, कुछ लोग हो सकता है ढेकी माने ना जाए। लकड़ी का जंत्र होता है, लकड़ी ऐसे, और उसके नीचे पेस्टल लगा होता है धान कूटने के लिए, और बीच में इस किनारे पर दो खंभे होते हैं, उससे उसकी लीक लगी रहती है। पिछले सिरे को दबाया जाता है, उठता है और छोड़ दिया जाता है तो धान के ऊपर गिरता है। उसको ढेकी कहते हैं। दिखाना चाहिए, भागवत पढ़ने वाले को ये सब देखना जरूरी है। शहर में रहने वाले को ये ज्ञान होना कठिन है, गांव वालों को ये भागवत बहुत जल्दी समझ में आ सकता है, क्योंकि सारा दृष्टांत दिया गया है गांवों का, वन पहाड़ आदि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे कोई पर्वत प्रमाण पर्वत के समान बड़ा दुष प्राप्त कर ले और कूटना चालू करे। कूटने से होगा क्या? तुष केवल चूर्ण होगा, चूर्ण से चूर्ण होता जाएगा, उसमें तो चावल है नहीं, और कूटे कूटे तो तेसा मसु क्लेशले वशिष्य थे। यदि कई लोग मान लीजिए अपनी अपनी ढेंकी में कई ज्ञानी अपने तुष कूट रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल यत्न करते हैं, भक्ति नहीं करते, जप आदि नहीं करते, तो उनको क्लेशले वशिष्य थे और कुछ नहीं मिलेगा। शिष्यते मतलब फल के रूप में क्या मिलेगा? क्लेशल। मान लीजिए बिना चावल के भूसी को कोई कूट रहा है तो उसे मिलेगा क्या? पैर में हाथ में दर्द मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्लेशल व शिष्यते। दिन भर कूटे, फिर रात को थक करके सो जाएगा, सवेरे फिर कूटे, फिर उपवास, फिर चिंतन, फिर शास्त्राध्ययन, शास्त्र मतलब उपनिषद वगैरह, तो उसको केवल क्लेश मिलेगा भूसा कूटने वाले को, और कुछ नहीं। कुछ लाभ तो हुआ नहीं, भूसा कूटने से कुछ मिला नहीं, उल्टे अनर्थ हुआ, शरीर में महती पीड़ा उत्पन्न हुई, और उसके बाद फिर दवाई कराएगा तो पैसा भी लगा, चावल मिला नहीं, ऊपर से केवल क्लेश अलय व शिष्य थे, केवल क्लेश मिला। उसी तरह से जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, केवल बोध लब्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, उनको केवल कष्ट होता है। ये बात श्री ब्रह्मा जी बछड़ा चलाने पर भगवान की जब स्तुति कर रहे थे तो भगवान से डायरेक्ट बोल रहे हैं। अगर गलती होती तो भगवान कहते नहीं ब्रह्मा जी ऐसा मत करो, यदि भगवान कहे होते कि नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, चले आखिर वो भी साधु है, कुछ तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं तेसा में सब क्लेश और शिष्य थे, केवल कष्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जैसे भारी मात्रा में तुष कूटने वाले को केवल शरीर में दर्द मिलते है और कुछ नहीं, कुछ नहीं लाभ। लाभ में वही है जो भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवत पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा, वही वास्तव में लाभ में है। बाकी बहुत बड़ा अज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं पर भारी अज्ञान है। चावल प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और कूट रहे हैं चावलहीन भूसा के पहाड़ को, क्या होगा? ये तो ऐसा जैसे लोग में कहते हैं खोदा पर्वत खोदा पहाड़ मिली चूरी है। रत्न प्राप्ति के लिए, सोना प्राप्ति के लिए कोई आदमी पहाड़ खोदा तोड़ा मरोड़ा कई साल लग गए, कैसन वो 90 साल 100 साल लग गए और अंत में एक चुहिया मिली और कुछ नहीं मिला। यही है, वो तो चुहिया भी मिली, हो सकता है कुछ काम करे, लेकिन ज्ञानियों को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। क्लेशल है वह शिष्य, केवल क्लेशल ही बचता है। क्लेशल का भी अर्थ जानते हैं क्या हुआ? क्लेश माने दुख और लव माने लाती दर्दाती। क्लेश प्राप्ति कराने वाली ही सफलता मिले, जो और क्लेश लावे और क्लेश दे। इसलिए सब कुछ छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और ज्ञान के बिना भी भक्ति कैसे मुक्त कर देती है, इसका उदाहरण देते हैं। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरंपिते। देखिए भक्ति का प्रभाव, भगवान कहते हैं ये मेरी त्रिगुणमयी माया जो है, बहिरंगा शक्ति दुरत्य है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, असंभव है। लेकिन कौन पार करते हैं? माने ये प्रपद देते माया नेता तरण, जो मेरी शरण लेते हैं केवल वही पार करते हैं। मान एवं शब्द है, जे और ते में भी लग सकता है। जो मेरी शरण लेते हैं वही तर सकते हैं, नान्य दूसरे नहीं कर सकते। जो भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का आदर करना सीख जाते हैं, भक्ति करते हैं और खास करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो माया को पार कर रहे थे। माया में तम इस माया को पार कर रहे थे, भगवान इसके दुरत्यत्व का वर्णन करते हैं। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्य और एतम माया तम एतम इस माया, बहुत कठिन है माया को पार करना, पर भगवान श्री कृष्ण की जो शरण लेते हैं वही पार कर सकते हैं। कृष्ण नित्य दास जीवता है भूली गेला ऐ दोसे माया तार गलाय और बांधिला। जीव कृष्ण का नित्य दास है, इसका स्वरूप है यह, लेकिन इस बात को नहीं याद रखता है, तो इस कारण से माया उसके गले में बांधती है रस्सी और इस जनी से उस जनी में पटकती रहती। कृष्ण नित्य दास जीव, जीव कृष्ण का नित्य दास है और तहा भूली गेल, इसका उसे स्मरण नहीं है, नित्य बद्ध कहते। इस दोष से माया पिशाची उसके गले में रस्सी बांध करके पटकती है, जन्म मरणादि देती है। तहा भूली गेल से ये नहीं समझना चाहिए कि वह कृष्ण की दासता में अवस्थित था भगवान के धाम में और वहां भूल गए, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान के धाम में माया नहीं है, तो इस जगत की बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जीव भूल गया है कि हम कृष्ण के नित्य दास। नित्य दास का मतलब है जीव का यह स्वरूप है। जैसे बरगद के एक बीज में एक शक्ति है कि वो उसको रोपा जाए और पृथ्वी में तो बढ़ करके बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष हो सकता है, उस बीज में जो बीज का स्वरूप है, परंतु वह बरगद के रूप में था पहले, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह भारी बरगद के रूप में था यह, हाँ यह बात है कि उसके भीतर बरगद है। ऐसे ही जीव का यह स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यह नित्य दास है, कभी दूसरा नहीं है, यह और किसी का नहीं है, किसी की मां नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी का कुछ नहीं है, यह कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन जीव इसको नहीं जानता है, इस दोष से माया पिशाची इसको जन्म मृत्यु में डालते हैं। मतलब नित्य बद्ध जो जीव है इस प्राकृत जगत में, उन्हीं के लिए बात कही गई है। अतः ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचन। अतः जब जीव कृष्ण का भजन करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचन। तत्ते कृष्ण भजे करे गुरु का सेवा, गुरु की सेवा करे और भगवान का भजन करे। तो इससे सिद्ध हुआ कि गुरु जो है वो कृष्ण का भक्त है। तथे कृष्ण भजे करे गुरु का सेवा। गुरु सेवा का मतलब यह नहीं कि कोई भी गुरु बना लिया उसकी सेवा करो तो तुम नरक में ही जाना पड़ेगा। गुरु है, गुरु है, गुरु गुरु कृष्ण का भक्त है कि नहीं पहले ये देखना चाहिए। यदि वो भगवान का भक्त है, कृष्ण का दास है, तब वो गुरु है। ठीक, उसके अलावा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ताते कृष्ण भज करे गुरु का सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचना। इसलिए साधक कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, गुरु की सेवा करता है तो माया जाल से छूट जाता। माया जाल, माया जाल है। जाल तो समझते हो, कभी रस्सी फंस जाती है, फंस जाती है, वो भी किसी को बांधी गई हो रस्सी, कई बार कई गांठ गिरा, इधर हाथ भी पीछे है, पैर फंसा हुआ है, सांस लेने में भी दिक्कत है, इधर भी रस्सी है, सब कुछ है, इसको माया जाल कहते। तो माया जाल छूटे, जाल कट जाता है और छूटने के बाद क्या होता है, पाए कृष्ण का चरण, वह श्री कृष्ण को पा जाता है, श्री कृष्ण का चरण कमल पा जाता है। बड़े लोगों का वर्णन उनके शरीर से, चरण से किया जाता है, उनके चरण को कहा जाता है तो उसका अर्थ है तो पूरा शरीर। तो पाए कृष्ण का चरण मतलब कृष्ण को पा जाता है। दो काम करना है, कृष्ण की भक्ति और गुरु की सेवा। तते कृष्ण भजे करे गुरु का सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचना। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरवे परिमत। चार वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और संन्यास, संन्यास वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी, चार वर्ण है और चार आश्रम है। शास्त्रों में कथित ढंग से यदि कोई व्यक्ति इन चारों वर्णों का, चारों नियम, संन्यास आदि आश्रमों के नियमों का पालन करता है, ठीक से ड्यूटी करता है, पर यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो स्वकर्म करिते से रौरव में पड़ी मत। अपना काम ठीक से कर रहा है फिर भी रौरव नरक में गिरेगा। और ये बात, ये वर्ण और आश्रम के धर्म का ठीक से पालन किया फिर भी नरक में गिरे। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, यदि कृष्ण की भक्ति नहीं किया तो ये सब कर्म करने, संन्यास के पूरा नियम निभा रहा है, गृहस्थ आश्रम में दान देना, ये करना वो करना, सब बाल बच्चा पैदा किया, ठीक तरह से अपनी कन्या का विवाह किया, अपने पुत्र का विवाह किया, धन भी है, सब मजे में है, दान कर रहा है, गृहस्थ का धर्म है, वानप्रस्थी पूरी तपस्या में है, कष्ट सह रहा है, सूर्य के प्रकाश में पकाया हुआ चीज केवल खाता है, कभी भोजन नहीं बनाता है, ये सब कर रहा है। यदि कृष्ण नहीं भजे, ब्रह्मचारी खुद गुरु की सेवा कर रहा है, उनके लिए पानी ढोना, ये लाना वो लाना, लेकिन यदि कृष्ण नहीं भजे तो स्वकर्म करते से गौरव में पड़ी मत, अपना स्वधर्म का पालन करते हुए भी नरक में गिरेगा, मौजी में उसी में डब डब करेगा, मरेगा, गौरव में पड़ी मजे डूबता है, डूब। सुख केवल मिल सकता है भक्ति से, बस भक्ति से, ये यहां बात कही जाती है। इसका भी उदाहरण नौ जगेश्वरों के संवाद से दे रहे हैं। मुख बाहुर पादेभ्य पुरुष आश्रम सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणे विप्रादय पृथक। भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के मुख, बाहु, उरु और चरण से चार वर्ण उत्पन्न हुए, चारों आश्रमों के साथ, जैसे विप्र आदि अपने अपने गुणों के साथ पृथक पृथक। यह ऐसा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव विश्वर न भजन तव जानते स्थान भ्रष्ट पतन के। लेकिन ये चारों वर्ण के लोग और चारों आश्रम के लोग जो कि भगवान से ही जिनकी उत्पत्ति है, भगवान ही परम पिता है, जनक है सबके, सबको उत्पन्न किए हैं। और ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न भजन के भजन नहीं करते हैं, बल्कि अवजानते और तिरस्कार करते हैं, तो स्थानक भ्रष्ट पतनते थे। वे अपने ब्राह्मण आदि पद से, अपने आश्रम से चिल्त हो जाते हैं, और उतना ही नहीं, स्खलित होकर के और फिर पतनते बहुत नीचे चले जाते हैं, पशु ऐसे माने जाते हैं यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। अथवा जो नहीं भजन करते हैं वो स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो अवजागृति भगवान का तिरस्कार करते हैं वो पतन होती है, बहुत नीचे हो जाते। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पायनो करिमाने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिना। ज्ञानी लोग कभी कभी मानते हैं कि हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, लेकिन करिमाने केवल मानते हैं, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिना। कृष्ण की भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। जो भी वो साधन करते हैं, ज्ञान का अभ्यास आदि, इससे सत्य शोधन नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। और इसी कारण से जब गंदा हृदय है, कोई बुद्धि ही नहीं है, तो मान लेते हम मुक्त हो गए हैं, पूरा बंधा हुआ आदमी, बड़ा पूरा बंधन में, जैसे किसी आदमी का हाथ बांधा गया हो, पैर बांधा गया हो, सब बांधा गया है, आंख पर पट्टी भी है, कान में टेपी भी है, कुछ भी लगा दिया गया, और वो माने झुटमुट के कि मैं तो मुक्त हूं, तो मानने से क्या होगा। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरोह्य कृष्ण परम पदम ततः पतंत नजुस्म पुनः ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के साथ गर्भ स्तुति करते हैं। यह प्रभु वो ऐसी बात कहेगी, त्वयं बुजाक्षा खिलसत धार्मी समाधि निश्चित फेंके तत्पाद पोते न महत कृत न गुरबंती गोवत्स पदम भवा। जो लोग आपके इस सुंदर स्वरूप में अपने चित्त को लगा लेते हैं, वो लोग बहुत आसानी से संसार सागर को पार कर जाते हैं, जैसे कोई बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर जाते। केवल भगवान में चित्त रखने से, मन रखने से ही वो व्यक्ति पार हो जाता है, केवल स्मरण से, भगवान के सुंदर स्वरूप आदि का स्मरण करने से। और स्वयं सुदुष्टर समय स्वयं स्वयं समुत्तीर्ण सुदुष्टर जीवन भवान भिन्न मत भ्रष्टा भगवत पदाम मंत्र निधाया जाता सदनों ग्रह भगवान। और भक्त स्वयं तो तर ही जाते हैं संसार सागर को, लेकिन संसार तरण साधन आपके चरण कमल की नौका को इसी तट पर छोड़ देते हैं, जिसे कि और लोग भी पार होते रहे। भगवान का चरण कमल ऐसा है कि उसका आश्रय लेते ही भव समुद्र विशाल समुद्र भी गोवत्स पद हो जाता है, तो उस पर तरने का क्या मतलब रहा है। ऐसा ऐसी नौका है भगवान का चरण कमल, उसका आश्रय लिए भक्त बन गए तो संसार सागर जो दूसरों के लिए दुस्तर है, वो तो भक्तों के लिए गोवत्स पद के समान बन जाता है। तो उसमें नाव चलेगी थोड़े जब गाय के खुर का, गाय के बछड़े के खुर का गड्ढा बना, तो उसमें नाव तो चलेगी नहीं, तो नाव जेव की तेव रह जाती नौका, उस पर दूसरे लोग पार होते रहते। तो स्वयं भगवान के चरण कमल की नौका स्थापित करके पार हो जाते। तो इससे प्रश्न होता है कि आप बार बार ज्ञान की निंदा कर रहे हैं और भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, बिना ज्ञान के भक्ति कैसे तारेगी। संसार से तरने का उपाय तो ज्ञान माना जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, ये बिंदक्ष विमुक्त नारी ने त्वयस्त भावादेव शुद्ध बुद्ध है, त्वी अस्त भाव, जिनका आप में अस्त भाव है, उदित भाव नहीं है, जो आपके भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते, वो अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, अतः वे अपनी अशुद्ध डर बुद्धि से मान लेते हैं विमुक्त मानी। वो मान लेते हैं कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त नहीं रहते, बल्कि अशुद्ध बुद्धि से जब आपके चरण कमल का अनादर करते हैं, आपको मायामय समझते हैं, प्राकृतिक कभी प्राकृतिक विकार समझते हैं, फिर पतंती अधर गिर जाते हैं, जहां है वहां से भी गिर जाते हैं, अनादृत दुश्मन बन रहे। इसके बाद ये है श्लोक, कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो यहां से कल व्याख्या की जाएगी। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।